नमस्कार दोस्तों, छिंदवाड़ा से दोस्त योगेश। हमारा आज का विषय है गांव आजीविका आजीविका और हम। मोबाइल वाणी पर गांव आजीविका और हम अभियान चलाया जा रहा है। इसमें किसानों द्वारा किस तरीके से अपनी फसलों की तैयारी, मिट्टी की गुणवत्ता के साथ में मौसमी सब्जियों पर किस तरीके से कार्य किया जा रहा है और साथ ही खाद और खरीफ फसलों के लिए किस तरीके से तैयारी की जा रही है। आज हमारे साथ कृषि विस्तारक अधिकारी पूर्व सेवानिवृत्त जागेश्वर जी ढोमने जी जुड़े हुए हैं। जागेश्वर जी, मोबाइल लेने पे स्वागत सर आपका।
नमस्कार जी।
सर, मानसून आने से पूर्व किस तरीके से मिट्टी की तैयारी की जाए?
जी, मानसून आने के पूर्व खेत की तैयारी माने अप्रैल या मई के बीच में गहरी जुताई करना चाहिए, या प्लाऊ से।
जी
तो गहरी जुताई करेंगे तो उसको अच्छी मतलब धूप लगेगी और जो कीट वगैरह है अंदर में जमीन के अंदर वो नष्ट हो जाएंगे और निंदा जो है निंदा के बीज वो नीचे चले जाएंगे तो निंदा भी नहीं उगेगा और जमीन के अंदर वायु का संचार अच्छा होगा और जमीन की पानी की शोषण क्षमता बढ़ जाएगी गहरी जुताई करने से। और जो कुछ उसमें ये कचरा वगैरह है वो ये बीन लेना चाहिए और बाहर कचरा डाल के उसको नष्ट कर देना चाहिए, या उसी की खाद बना सकते हैं अपन, ये जैविक खाद ये उसमें। और ये तैयारी होने के बाद फिर अपना बीज वगैरह ले आना चाहिए। अच्छा, जो भी एरिया के अनुसार जो भी फसल बोते हैं, जैसे अपने एरिया में सौसर में ये कपास बोते हैं, कपास तुअर, तो वो बीज की अपन ने यहाँ पे व्यवस्था कर लेना चाहिए घर में, और वो भी अच्छा बीज गारंटेड, और दुकान से उसकी मतलब रसीद लेना चाहिए क्योंकि आजकल नकली बीज भी ये दुकान से सप्लाई हो रही है, किसान उसमें लूटे जा रहे हैं, ज्यादा कीमत ले रहे हैं, इसलिए रसीद लेना बहुत आवश्यक है। यदि बीज खराब हुआ तो किसान उसकी शिकायत कर सकता है, उसको उसके पैसे वापस मिल सकते हैं। और सोसाइटी से जो खाद वगैरह है, रासायनिक खाद, डीएपी, यूरिया, सुपर फास्फेट, पोटाश, ये किसान ने अपने यहाँ पे लाके रख देना चाहिए क्योंकि होता क्या है कि बोनी के समय किसान सोसाइटी में जाता है तो खाद ही नहीं रहती, खाद का स्टॉक खत्म हो जाता है, तो उसमें क्या है कि उसके एक दो दिन की ये बोनी लेट हो जाती है या फिर वो बाहर से खाद लाने की ये कोशिश करता है, बाहर से खाद ये महंगी मिलती है, कभी कभी नहीं मिलती तो उसकी बोनी लेट हो जाती है। बोनी लेट हो जाने से फसल की उपज के ऊपर भी असर होता है। तो खेती किसानी में क्या है कि ये समय का बहुत महत्व है। सही सही समय पे जो काम करना है वो अगर आप खेती में बराबर समय के अनुसार करते हैं तो उत्पादन अच्छा मिलता है।
जी
जी
सर, क्या देखते हैं मिट्टी परीक्षण की तैयारियों में जिस तरीके से किसान को बहुत सी मेहनत करनी पड़ती है, क्या आपके क्षेत्र में कोई मिट्टी परीक्षण केंद्र बने हुए हैं जिस तरीके से किसानों को मिट्टी परीक्षण की जानकारी मिल सके?
जी नहीं, हमारे यहाँ तो जी ये सौसर में मिट्टी परीक्षण केंद्र तो नहीं है, मोखेड़ ब्लॉक में है, वो अभी शायद चालू नहीं हुआ है, छिंदवाड़ा में है ये शासकीय अपना ये मिट्टी परीक्षण। तो बोनी के पहले मिट्टी की जांच करना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए कि जो अपन फसल बोने जा रहे हैं अपने ये खेत में, तो फसल के अनुसार उसमें खाद है कि नहीं है जमीन के अंदर, पहले से कितनी खाद है अभी। अब ये मिट्टी परीक्षण अपन करेंगे, उसका जो आएगा जांच रिपोर्ट मिट्टी की, उसमें एनपीके कितनी मात्रा में है ये अपने को मालूम हो जाएगा। तो जो उसमें है मात्रा वो मात्रा काट के उस फसल को कितनी खाद लगती है एनपीके, वो अगर किसान बराबर देता है तो उसमें खाद कम लगेगी किसान को, मतलब ज्यादा खाद देने जा रहा है तो वो नहीं देगा, क्योंकि उसको मालूम हो जाएगा कि अपनी मिट्टी में तो एनपीके इतना इतना है, तो वो माइनस करके जो ये फसल को खाद लगती है उतनी मतलब दे, तो किसान की काफी बचत भी हो जाएगी और पौधों को संतुलित मात्रा में एनपीके भी मिलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से क्या है कि रासायनिक खाद से जमीन बंजर होते जा रही है, क्योंकि किसानों ने अधिक मात्रा में जमीन में खाद दे दिया और वो है रासायनिक खाद। रासायनिक खाद ने जमीन के मिट्टी के कण के ऊपर रिएक्शन किया और जमीन की उपजाऊ क्षमता जो है वो एकदम कम कर दी। अब क्या हो रहा कि खाद ज्यादा लग रहा और उपज कम हो रही। इसलिए मेरा मानना है कि रासायनिक खाद तो देना ही चाहिए लेकिन बहुत कम। जैविक खाद दो, गोबर की खाद अच्छी सड़ी हुई, या केचुआ खाद, या फिर नाडेप खाद, या गोबर गैस की जो निकलती है ये स्लरी, वो अगर अपन खेत में डाले तो जमीन की उपजाऊ क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, टिकाऊ रहेगी और फसल भी अच्छी होगी।
जी, किसान ऐसे क्या प्रयास करे और सरकार के द्वारा ऐसे क्या मुहिम होनी चाहिए कि जैविक खेती के लिए, फसलों के उत्पादन के लिए किसान प्रयास कर सके और जैविक खेती में जो किसान हैं वे अपने उत्पाद बढ़ाने के साथ साथ जो मिट्टी की गुणवत्ता है वो भी कायम रहे, इसके लिए सरकार द्वारा और किसान द्वारा भी क्या-क्या प्रयास किए जाने चाहिए?
जी, सरकार द्वारा ये प्रयास करना चाहिए कि किसानों ने अधिक से अधिक मात्रा में जैविक खाद डालना चाहिए और कीटनाशक दवा का स्प्रे बहुत कम करना चाहिए। आजकल जैविक कीटनाशक भी निकली है, उसके लिए शासकीय स्तर पे प्रचार प्रसार किसानों में होना चाहिए, सेमिनार या सम्मेलन या ये संगोष्ठी करके इसके बारे में किसानों को इसका महत्व समझाना चाहिए अच्छे से, तो किसान उसी तरफ वो मुड़ेंगे। मैं ये देख रहा हूँ कि जो शासकीय अपने ये कार्यक्रम है वो ये बहुत ही कम हो रहा है इसके बारे में, प्रचार प्रसार के बारे में। जैसा उनको चाहिए सलाह किसानों को, वो सलाह नहीं मिल पा रही है पूरी तरह से। जो जागरूक किसान है वो तो यहाँ वहां से अपने वो जानकारी ले लेते हैं, लिटरेचर ले लेते हैं, लेकिन जो बेचारे अनपढ़ किसान है या कम पढ़े लिखे हैं या बाहर नहीं जा सकते, वो उनकी आर्थिक कंडीशन ये कमजोर होने से, तो वो जो पुराने जो विधि से खेती ये कर रहे हैं उसमें उनकी उपज थोड़ी मार खा रही है। तो शासन की ओर से इसमें भरपूर प्रयास करना चाहिए प्रचार प्रसार के लिए, और उसमें अनुदान भी देना चाहिए। जैविक खाद है या ये कीटनाशक है कृत्रिम अपना ये जैविक, तो इसमें भरपूर अनुदान देना चाहिए ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा उसका इस्तेमाल करे जैविक खाद का और जैविक ये कीटनाशक का। और किसान को सही सलाह बताने के लिए शासन की ओर से भरपूर प्रयास करना चाहिए, गांव गांव उनके किसानों की बैठक लेके उनको ये सब जानकारी बताना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।
सर क्या देखते हैं छिंदवाड़ा जिले में खरीफ की फसलों के लिए, मूंगफली हो, मसूर हो, कपास हो, सोयाबीन हो और धान जैसी फसलें जो बोई जाती है, इसकी
जी
तैयारी किस तरीके से देख रहे हैं और मानसून की लेट लतीफी के साथ किसान किस तरीके से तालमेल बिठाकर फसलों की बुआई के साथ तैयारी करें?
जी मेरा ये विचार ऐसे है जी, अगर खेत किसान के खेत में यदि बोर है या कुआं है और उसमें भरपूर पानी है, तो वो मानसून आने के पूर्व भी अपने सिंचाई करके बोनी कर सकता है। वैसे देखा जाए तो मानसून आने के बाद ही जैसे ये 4-5 इंच बरसात होती है, माने 4-5 इंच मिट्टी जैसे ये भीगती है, उसी समय बोनी करना बहुत आवश्यक है। पूरा मानसून आने के बाद होता क्या है कि अब जैसे इस साल 10-15 ये जून को मानसून आना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश वो तूफान वगैरह जो निकला है, ये डिपर जो है, उसकी वजह से मानसून लेट हो रहा। ऐसा लग रहा कि 20 जून के बाद ही अपने यहाँ पे मानसून आएगा। तो मानसून के अगर अपन रास्ता देखे तो इधर क्या है कि बोनी बहुत लेट हो जाएगी। अगर जून में अपन बोनी करते हैं फसलों की, तो उसकी उपज अच्छी मिलती है और फसल भी जल्दी कट जाती है और खेत भी खाली हो जाते हैं। तो ये मतलब पूरी तैयारी किसानों ने मानसून आने के पहले ये कर लेनी चाहिए।
जैसे
जी
कि आपने अभी कहा कि जिनके पास अगर कोई व्यवस्थाएं हो, जैसे कुएं ट्यूबवेल हो, तो वे अपनी बुआई कर सकते हैं। सर क्या देखते हैं, अगर किसान अगर इन चीजों से बुआई कर लेते हैं और सिंचाई कर लेते हैं, परंतु जिस तरीके से तापमान बढ़ता जा रहा है, तो इसका एक प्रभाव फसलों पे किस तरीके से देखेंगे?
जी ये पर्यावरण जो प्रदूषण हो रहा उसी की वजह से ये क्लाइमेट चेंज वगैरह, ये तूफान वगैरह आना, ये उसी का असर है। दिनों दिन तापमान बढ़ रहा है धरती का, हर साल 1-1.5 डिग्री उसमें इजाफा हो रहा तापमान में। तो ये हुआ, ये प्रदूषण के कारण है ये क्लाइमेट चेंज, और उसमें अपन ही सब लोगों का हाथ है
जी
पर्यावरण प्रदूषण करने में। जैसे वाहनों का धुआं जा रहा, कारखानों का धुआं जा रहा, उससे ये वातावरण पूरा ये प्रदूषित हो रहा है। अपन ने ये प्रकृति के साथ में जितने अपन ज्यादा छेड़खानी करेंगे, हाँ,
जी
प्रकृति उतनी अपने को नुकसान पहुंचाएगी। तो ये अपनी ये गलती है। इसलिए क्या है कि ज्यादा से ज्यादा पौधे अगर लगाए अपन ने, तो उससे प्रदूषण साफ होने में काफी सहायता मिलेगी। और जो अपन असर असर दिख रहे, दिनों दिन टेम्परेचर बढ़ रहा, और
अच्छा
जो बर्फ के पहाड़ है,
जी
ग्लेशियर जिसको ये कहते हैं, वो ये पिघल रहे और वो समुद्र में गिर रहे हैं। समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है दिनों दिन। एक दिन ऐसा आएगा 25-30 साल के बाद में, ऐसा मेरा अंदाज है, कि जहां तहां ये पानी पानी हो जाएगा, यानी समुद्र का जल स्तर ये बढ़ रहा है, तो धरती में पूरी इसमें पानी पानी हो जाएगा। इसलिए इंसानों ने या जनता ने संभल जाना चाहिए,
जी
पर्यावरण पर्यावरण के प्रति सजग हो जाना चाहिए
जी
कि अपने हाथ से ज्यादा पर्यावरण प्रदूषण ना हो, इसकी सावधानी बरतना चाहिए और पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए। जी
क्या सर एक किसान के रूप में किस तरीके से जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में क्या भूमिका निभा सकता है एक किसान?
जी इसमें पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण करने में किसान बहुत ये कर सकता है उसमें सहयोग। जैसे कि खेतों में जो अपन कचरा ये जलाते हैं, उससे ये धुआं होता है, वो भी हानिकारक है। कीटनाशक दवा का स्प्रे अंधाधुंध जो करते हैं, वो भी हानिकारक है। रासायनिक खाद संतुलित मात्रा से आगे बहुत ज्यादा दे देते हैं, वो भी हानिकारक है।
जी
किसान पौधे भी लगा सकते, इसमें पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित कर सकता है किसान, वो उसमें हाथ में है। बस उसको जानकारी भर होना चाहिए इसकी,
जी
उसने इसका महत्व जिसने ये समझा तो वो नियंत्रण कर सकता है।
जी
जी
सर मेरा अंतिम सवाल है कि क्या किसान जो बोनी की तैयारी में है खरीफ फसलों को लेकर और मानसून की लेट लतीबी से, आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे किसानों के लिए कि वे अपनी फसलों की बुआई किस तरीके से करें और साथ ही मानसून का और कितना इंतजार करें और अपनी मिट्टी की तैयारी किस तरीके से पूर्ण करें?
जी इसमें अभी इस साल मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि 20 जून के बाद ही मानसून का प्रवेश होगा। तो अभी मैंने इसके पूरा जो बताया कि जिनकी यहाँ पे कुएं है, बोर है, अच्छा पानी है, वो तो सिंचाई करके संतुलित मात्रा में खाद वगैरह दे के फसल बो सकते हैं, या जिनके पास नहीं है ये साधन सिंचाई करने के, तो वो उनको तो मानसून के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ेगा। तो मेरा विचार यह है कि पूरा मानसून आने के बाद ही किसान बोनी करे। कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा ये बरसात का पानी आ जाता है मानसून का, और उसके बाद में मानसून ये कमजोर हो जाता है, तो फिर नहीं आता पानी। तो ये थोड़ी सावधानी बरतना चाहिए। जब तक 3-4 इंच पानी न गिरे, जमीन पूरी तरह से न भीग जाए, तब तक बोनी करना हानिकारक है किसानों के लिए, ऐसा मेरा मानना है।
तो आज हमारा कार्यक्रम था गांव आजीविका हम विषय पर। आज हमारे साथ जागेश्वर जी ठुमने ने अपने विचार मोबाइल वाले के साथ साझा किए। जागेश्वर जी, मोबाइल वाले को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
धन्यवाद जी, धन्यवाद।
छिंदवाड़ा वैलेंस सबका दोस्त योगेश, धन्यवाद।